मोह का जो प्रभाव है वो अत्यंत बलवान है। आचार्य कहते हैं कि इस महामोह को छोड़कर और सारे इंद्रिय सुखों को नश्वर जानकर अपने मन को विषयों से हटा लो, जिससे तुम्हें उत्तम सुख का लाभ हो सके। इस तरह यह अनित्यानुप्रेक्षा का सारांश था। फिर अशरणानुप्रेक्षा में आचार्य महाराज ने पहली गाथा दी है, जबरदस्त है, कि उस संसार में कौन रक्षक हो सकता है जहां देवों के इंद्र भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हरि हर ब्रह्मा आदि सब समय के असीम प्रवाह में आज कहीं नजर नहीं आते हैं, सब विलीन हो गए। वहां सामान्य मनुष्य कब तक टिका रहेगा, इसको कौन बचा लेगा मरने से? यानी मरने से बचाने वाली कोई शक्ति दुनिया में नहीं है। जिस प्रकार सिंह के चंगुल में पड़े हुए सारंग अर्थात मृग हिरण को कोई बचा नहीं सकता, उसी प्रकार जब जीव को मृत्यु ग्रहण कर लेती है तब कोई उसका रक्षक नहीं हो सकता। यदि देव भी किसी मरते हुए प्राणी को बचा लेता, यदि कोई मंत्र मरने वाले को जीवित रख लेता, यदि कोई तंत्र विधि मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ होती, अथवा यदि कोई क्षेत्रपाल देव, यक्ष देवों में कुछ ऐसे देव रहते हैं जो एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र में धर्म की रक्षा का कार्य किया करते हैं, यदि कोई ऐसा क्षेत्रपाल देव भी मियमाणम पि मनुष्यम रक्षति, मरते हुए मनुष्य की रक्षा कर लेता तो क्या होता? मनुष्य अमर बन जाते हैं और सारी धरती पर मनुष्य ही मनुष्य नजर आते हैं। लेकिन नहीं, मरते हुए को कोई बचा नहीं सकता। अत्यंत बलवान, क्रूर और कितना भी प्रचंड कोई क्यों न हो, इस संसार में मरण रहित कोई नहीं है। और अनेक प्रकार के रक्षकों से रक्षित होने पर भी मृत्यु से रक्षा करने वाली कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। ऐसा देखते हुए भी, जानते हुए भी, जो ग्रहों की आराधना करता है, भूत पिशाचों को प्रसन्न करना चाहता है, योगिनी और यक्ष को भी मनाता है और ये समझता है कि इनके निमित्त से मैं मरने से बच जाऊंगा, तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रगाढ़ मिथ्यात्व के उदय से ग्रस्त है। क्योंकि मिथ्यात्व नाम का जो मोह कर्म है, उस मोह के उदय में ही बुद्धि भ्रमित होती है। आयु के क्षय से मरण होता है और आयु देने की ताकत किसी के पास होती नहीं, इसीलिए देवों का इंद्र भी मरने से किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो किसी को आयु दे नहीं सकता। आयु दे तो वो बचे, आयु दी नहीं जा सकती तो बचाया भी नहीं जा सकता। यदि देवों का इंद्र भी मरण काल में अपने आप की रक्षा कर लेता तो वो ऐसे उत्तम सुखों से भरे हुए स्वर्ग को छोड़कर नीचे क्यों आता धरती पर? यानी देव लोक छोड़ करके भी इंद्र को अपनी आयु पूर्ण करके धरती पर आना पड़ता है। यदि वो अपने आप को भी बचा लेता मरने से तो स्वर्ग से नीचे आता ही क्यों? मतलब ये हुआ कि इंद्र भी मरने से अपने आप को नहीं बचा सकता, दूसरों को क्या बचाएगा? आचार्य अंत में कहते हैं, संसार में भ्रमण करने वाले जीवों के लिए और कोई शरण नहीं है, एक रत्नत्रय ही शरणभूत है। इसलिए परम श्रद्धा पूर्वक अर्थात सम्यक्त्व पूर्वक दर्शन ज्ञान और चारित्र को शरण मानकर उसकी आराधना करो। दर्शन यानी श्रद्धा, ज्ञान यानी जानना और चारित्र यानी अणुव्रत महाव्रतों का आचरण करना। बस यही शरण है संसार में, और कोई नहीं, आत्मा को ही बचा लेंगे। आत्मा की रक्षा इनसे होगी, मरने से तो कोई बचाने वाला है नहीं, लेकिन आत्मा मरण के समय समाप्त नहीं होती, मरने के बाद और कहीं जन्म धारण करती है। कहाँ जाना है, दुर्गति में, सद्गति में, या चारों गतियों से पार? आत्मा को बचाना हो तो रत्नत्रय की ही शरण है। और फिर आचार्य कहते हैं कि जिसके हृदय में क्षमा आदि भाव है, यहां जो लिखे हुए हैं द्वार पर क्या लिखा है, ऊपर तो भगवान के नाम है, नीचे देखिए कलश और साथिया के बीच उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। इन भावों से यदि अपनी आत्मा परिणत हो जाए, अर्थात ये भावनाएं अपनी आत्मा में समा जाए, तो फिर अपनी आत्मा ही अपनी रक्षक बन जाती है। और अपनी आत्मा अपने आप को नुकसान कब पहुंचाती है, जब अपन क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, तीव्र कषायों के आवेश में पड़ जाते हैं, तब अपनी आत्मा ही अपना हनन करती है, अपने आप को हानि पहुंचाती है। इसके आगे संसार अनुप्रेक्षा में आचार्य कहते हैं, एक शरीर छोड़कर नए नए दूसरे शरीर को जीव ग्रहण करता है, बार बार पुराने शरीर छोड़ता है, बार बार नए शरीर धारण करता है। इस प्रकार जो नए नए शरीरों में इसका भ्रमण होता है, मिथ्यात्व और कषायों के कारण, बस इसी का नाम है संसार। यानी जगत या लोक अलग वस्तु है और संसार अलग वस्तु है। संसार भ्रमण को कहते हैं और लोक इस जगत को कहते हैं, भ्रमण का जो क्षेत्र है, स्थान है वो। और जो अपना अंदर भ्रमण चालू है, अंदर भी चालू है सब, और फिर शरीरों में भी, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में भ्रमण चलता ही रहता है, इसका नाम संसार है। इसीलिए अनुप्रेक्षाएं 12 है, लोक और संसार अनुप्रेक्षा अलग अलग है। पाप के उदय से नरक चला जाता है और वहां बहुत प्रकार के दुख झेलता है। अन्य दुखों के साथ उन दुखों की कोई उपमा नहीं जोड़ी जा सकती। वो 5 प्रकार के दुख हैं। कुछ तो असुर लोग जाकर के नरक में रहने वाले प्राणियों को आपस में भिड़ाते हैं, दूसरे उनके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां रहती हैं, तीसरा उनको अनेक प्रकार का मानसिक दुख भी होता रहता है, पश्चाताप होता है कई बार, कभी जाति स्मरण हो जाए तो पूर्व जन्म का स्मरण करके उनको लगता है कि अरे मैंने ये सब क्या किया था, मैंने व्यसन किए थे, मैंने त्रस और स्थावर जीवों का घात किया था, मैंने निरपराधों को दंड दिया था, मैंने निर्दोष प्राणियों को सताया था, मैंने 7 प्रकार के दुर्व्यसनों में पड़कर अपना जीवन बर्बाद किया था। जिस मनुष्य जीवन में मनुष्य संसार से पार हो सकता है, उसी मनुष्य जीवन में मैंने नरक जाने की तैयारी की, मैं कितना दुर्बुद्धि था। वहां गुरुजन कहते थे कि हे जीव, तेरे सुख में साथ देने वाले ये सारे संगी साथी हैं, लेकिन जब तुझे पाप का फल मिलेगा तब एक भी साथी नहीं मिलेगा। वो बात आज अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि वास्तव में सब लोग सुख में ही साथ देते हैं, संकट में कोई किसी का साथी नहीं होता। मानसिक दुख, फिर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला दुख, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। भयंकर दुख, वहां की भूमियों से संबंध रखने वाला। कुछ उष्ण भूमियां हैं, वज्राग्नि के समान गर्म, बिजली गिरती है तो कितनी उसमें क्या टेम्परेचर रहता है, हजारों डिग्रीज, वैसी गर्मी। और कहीं शीत, निचली पृथ्वियों में अत्यंत शीत वेदना है, तो वहाँ क्षेत्र से संबंधित भी तीव्र दुख भोगना पड़ता है। और पांचवा दुख है आपस में एक दूसरे को दिया जाने वाला दुख। कभी भी वो एक दूसरे को सुखी नहीं रहने देते, हमेशा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, तिल के बराबर टुकड़े कर डालते हैं शरीर के, और फिर उसमें भी भेदन कर करके और उसको कूट डालते हैं, वज्राग्नि में काढ़ा बना देते हैं, और अपवित्र कुंडों में उनको निक्षिप्त कर डालते हैं, फेंक देते हैं गंदे स्थानों पर। वैसे भी मनुष्य पर्याय में शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं लोग, मरने के बाद नरक गति में, उससे और अधिक दुर्गति होती है। इत्यादि दुख नरकों में जीव एक क्षण में सहन करता है, तो फिर वहाँ के सारे दुख का वर्णन करना किसके बस की बात है। हजार जिह्वाओं भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी नरक के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो अपने को समझाने के लिए ऐसे सब दृष्टांत दिए हैं। वहाँ नरक में न तिल है, न अनाज है, न पानी है, वो तो अपने को यहाँ की भाषा में समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा दुख होता है, वरना अंत में तो कह दिया कि हजार जिह्वाओं से भी वहाँ के दुख का वर्णन नहीं हो सकता। क्षेत्र स्वभाव से सब कुछ वहाँ नरक में अशुभ रूप परिणत होता है, और वो एक दूसरे के प्रति हमेशा कुपित बने रहते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में साथ बैठकर शराब पी हो, लेकिन आज वो एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत रहते हैं, और उस जन्म में जो सुजन था, अपना इष्ट मनुष्य था, कोई रिश्तेदार था, वो भी नरक में अत्यंत कुपित होकर शत्रु का काम करता है। इस तरह तीव्र कर्म के फल को बहुत काल तक वो दुखपूर्वक सहन करते हैं, और फिर नरक गति से बड़ी मुश्किल से ले देकर जब बाहर निकलता है तो अनेक प्रकार के तिर्यंच जीवों में उत्पन्न होता है, पशु पक्षियों में, और वहाँ भी गर्भावस्था तक में अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त कर लेता है। कभी कभी बकरी को, गर्भवती बकरी को कसाई काट डालता है, तो गर्भ में जो बच्चा है बकरी का वो भी मारा जाता है। बकरी के गर्भ के जो बच्चे होते हैं तो चिड़ियाघर में भेज दिए जाते हैं, शेर लोग खाते हैं उसको। हाँ, चिड़ियाघर के जो जानवर है, जो मांसभोजी प्राणी है, 10-10 किलो वजन उसको खिलाया जाता है मांस, और वो उनके गर्भ से निकले हुए जो बच्चे हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। माने तिर्यंच गति में भी कहीं सुख नहीं मिला है जीव को, संसार में भटकते भटकते हमेशा अगणित कष्टों को इसने भोगा है। फिर आगे कहते हैं कि अगर गर्भ में कुछ नहीं हुआ तो जन्म ले लेगा, जन्म लेने के बाद भी कोई सुरक्षित जीवन तो है नहीं। दूसरे जानवर एक जानवर को खा जाते हैं, जिंदा चबा डालते हैं, अब भी आज हम लोग देख कर आ रहे हैं। आज सवेरे जब वहां से लौट रहे थे तो फिर 5 कुत्ते मिलकर के एक सुअर को चबा रहे थे, वो चीख रहा था। फिर हमने ऐसे इशारा किया, उनने मतलब फिर पत्थर मारे या जैसे भी करके उनको भगाया और उसकी जान बची, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। तो दूसरे तिर्यंच एक को खा जाते हैं और दुष्ट मनुष्य भी उनको मार डालते हैं। अभी कल श्वेतांबर भाई लोग आए थे, कुछ लड़के यंग नवयुवक थे, वो बता रहे थे कि एक ट्रक पकड़ा, उसमें 248 घेंटे थे, एक ट्रक में 248 भेड़ और कुछ बछड़े भी थे, 6-7 और भी कई जानवर। क्या दुर्दशा हुई उनकी, लेकिन छुड़ाने के बाद फिर उनको निकाला, वो बेचारे जिंदा थे। अगर ज्यादा दूर चला जाता ट्रक तो धक्कों से ही उनके प्राण निकल जाते। तो दुष्ट मनुष्यों के द्वारा वो हनन को भी प्राप्त होते हैं। सर्वत्र संतत्त हो, सब तरफ से उनको भय बना रहता है, और भयंकर भय और कष्ट को तिर्यंच गति में वो जीव सहन करता है। एक दूसरे का भक्षण करते हैं तिर्यंच, और तीव्र दुख को प्राप्त होते हैं, और फिर आगे ज्यादा क्या कहना। स्वयं कुतिया अपने बच्चे को खा जाती है, जब माँ ही बच्चे की भक्षक बन जाए तो संसार में रक्षक दूसरा कौन हो सकता है? तीव्र प्यास लगने पर वो जानवर प्यासा भटकता है, तीव्र भूख लगने पर भूखा भटकता है, और उदराग्नि यानी जठराग्नि से जलता हुआ वो प्रचंड दुख को भोगता रहता है। पता नहीं कितने दिन में उसको भोजन मिलेगा, कई बार चार चार दिन हो जाते हैं, भूखा है जानवर, किसी को परवाह नहीं है, सबको अपनी पड़ी है। लोग मनुष्य के बारे में नहीं सोचते तो जानवरों की तो बात दूर रही। अपना पड़ोसी भूखा मर गया, इनको पता ही नहीं है, चार बार खा रहे हैं दिन में, किसी की किसको चिंता है। वो बेचारे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं और ये अपने ठाट से जी रहे हैं। करुणा तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती, करुणा संसार में दुर्लभ हो गई है। इस प्रकार अनेक प्रकार के दुख को तिर्यंच योनियों में जीव सहन करता है और वहां से निकलकर बड़ी मुश्किल से लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य भाव को प्राप्त करता है। लब्धि अपर्याप्तक यानी मनुष्य जीवन मिल रहा है लेकिन कोई माता पिता नहीं है, और शरीर बनने के पहले ही प्राणांत हो रहा है। एक मुहूर्त में 8 बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। कुल 24 भाव होते हैं पंचेंद्रियों के एक अंतर मुहूर्त में, और सब मिला करके देखो क्षुद्र भावों की जो गिनती है, एक श्वास में 8-10 बार जो बात आती है ना, तो एक मुहूर्त में 66,132 एकेंद्रिय के भाव हैं, जिनको लिखना हो लिख लेना। एक मुहूर्त में 66,132 स्थावरों के भाव हैं, 80 भाव 2 इंद्रिय जीवों के हैं, 60 भाव 3 इंद्रिय जीवों के हैं, 40 भाव 4 इंद्रिय जीवों के हैं, और 24 भाव जो पंचेंद्रियों के हैं उसमें 3 विभाग हैं, 8 मनुष्य के लब्धि अपर्याप्तक, 8 असैनी तिर्यंच पंचेंद्रिय के लब्धि अपर्याप्तक, और 8 सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के लब्धि अपर्याप्तक भाव। इस प्रकार कुल मिलाकर एक मुहूर्त में एक जीव इतने भाव धारण कर सकता है। एक मुहूर्त में 66,336 भाव, विचार करने की बात है। और एक मुहूर्त में जो श्वास का परिमाण होता है, छठे काल के अंतिम समय में जो मनुष्य एक हाथ ऊंचा होता है, पंडित जगनमोहन लाल जी ने ये चिंतन बताया था कि उस समय श्वास की गति बढ़ जाती है। क्या होता है कि जितना छोटा आकार होगा श्वास उतनी तीव्र होगी, जितना बड़ा आकार होगा धीमे धीमे सांस लेगा। हाथी की सांस बहुत धीमी होती है, और पक्षी की सांस देखना कभी आप, चिड़िया की ऐसे एकदम फास्ट सांस चलती है उनकी। पंचम काल के अंत में 2 हाथ की ऊंचाई अथवा 3 हाथ की या 3.5 की ऊंचाई, 3 मत मिलते हैं शास्त्रों में, लेकिन छठे काल के अंत में 1 हाथ की ऊंचाई रहती है। उस समय श्वास का जो परिमाण एक मुहूर्त में 3,773 श्वास, कितने 3,773 श्वास, और 3,773 श्वास में 66,336 भव, तो एक श्वास में कितने भव हुए? बिल्कुल स्पष्ट हिसाब 18 भव, एक श्वास में 18 भव। ये उसका खुलासा है पूरा भवों का, 84 लाख योनियों की और एक श्वास में 18 बार की चर्चाएं तो सबने सुनी है, लेकिन स्पष्टीकरण उसका ये है जीव सिद्धांत में, और जरूरी है, इसको जानना भी आवश्यक है। एक इंद्रिय के कितने भाव है? 66,132। द्विइंद्रिय के 80, त्रिइंद्रिय के 60, और चतुरिंद्रिय के 40। फिर पंचेंद्रिय के 24 भाव किस प्रकार है? तो 3 विभाग है उसमें, एक असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8 भाव, फिर दूसरे सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 8 भाव, और तीसरे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के 8 भाव। तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य बन जाता है, और उसमें भी कभी सकाल मरण कभी अकाल मरण दोनों स्थितियां बन सकती है। इन भवों में भी अकाल मरण हो सकता है, वैसे ही उनका मरण होने वाला अपर्याप्तक अवस्था में, तो भी क्षुद्र भव में भी अकाल मरण। देखो कैसी विचित्रता है संसार की। सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते समय आचार्य श्री एक बार बोल पड़े कि कैसे इनका भी अकाल मरण कैसे होता होगा। तब फिर वैसे ही विचार करते करते हमने निवेदन किया, महाराज श्री इनका अकाल मरण भी हो सकता है। अब एक दृष्टांत, तिर्यंच गति का दृष्टांत तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे कोई अपवित्र स्थान है, वहाँ पर बहुत सारी अशुचि वस्तुएं पड़ी हुई है, कई प्रकार के सम्मूर्छन जीव वहाँ उत्पन्न हो रहे, क्षुद्र भाव को धारण करने वाले भी पता नहीं कितने सम्मूर्छन जीव वहाँ होंगे, उस पर किसी ने एसिड डाल दिया, फिनाइल डाल दिया या और कोई ऐसी चीज़ डाल दी, तो उन मतलब अगणित जीवों का वहाँ पर क्षण मात्र में हनन हो जाएगा, वो अकाल मरण हुआ कि सकाल, वैसे ही उनका मरण होने वाला है अंतर्मुहूर्त में, लेकिन उस निमित्त से उनका असमय में मरण हो जाता है। इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों की उत्पत्ति शरीर के अशुचि प्रदेशों में होती है, कानों के अंदर जो मैल होता है उसमें, नासिका में, दंत मल में, और फिर शरीर के और हिस्से हैं जहाँ पर पसीने की मात्रा कुछ अधिक मात्रा में होती है, जहाँ से अपवित्र पदार्थों का स्राव होता रहता है, उन स्थानों पर भी लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। अब्रह्म सेवन के काल में लब्धि पर्याप्तक मनुष्यों का हनन होता है। और आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है कि एक बार कुशील का सेवन करने में 900,000 लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का हनन नियम से होता है, 900,000। खैर वो एक आरंभी हिंसा जैसी है, माने गृहस्थ जीवन में समझ लो, जिनका ब्रह्मचर्य व्रत है वो तो बच गए उस हिंसा से, लेकिन बाकी जो है संकल्प हिंसा तो उसको कहते हैं कि जहाँ संकल्प करके किसी जीव का घात किया जाए, लेकिन ये क्या है कि विषय सेवन में आरंभ में हिंसा होती है, तो इसलिए जहाँ तक बने इसमें भी परिमाण रखना चाहिए, जीवों की विराधना कम से कम हो। गृहस्थ जीवन है तो पूरी तरह अहिंसा तो पल नहीं सकेगी, लेकिन तो भी अष्टमी चतुर्दशी को तो नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और भी पर्वों की तिथियों में ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए, और जो बड़े बड़े पर्व आते हैं, 10 दिन के पर्व है, 8 दिन के पर्व है, उन दिनों में भी ब्रह्मचर्य का नियम रखना चाहिए, और जहाँ बने जितना बने उतना अपने को बचना चाहिए इन अशुभ कर्मों से। तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य की बात हुई, और वो सिर्फ आर्यखंड में होते, ये भी याद रखना, लब्धि अपुण्णा मण्व्या अज्जव खंडे सुहुंत नियमेण, इसी ग्रंथ की गाथा है, आर्यखंड में ही होते हैं, सर्वत्र नहीं होते, म्लेच्छखंड में नहीं होते लब्धि अपर्याप्तक, भोग भूमियों में नहीं होते, और विदेह क्षेत्र में भी जो 5 म्लेच्छखंड है वहां नहीं होंगे, आर्यखंड में ही होंगे। विदेह बड़े विदेह महाविदेह कहलाते हैं, 5 है वो, और उनके अंतर्गत जो विदेह हैं वो एक महाविदेह में 32 विदेह होते हैं, 5 महाविदेह में 160 होते हैं, और 5 भरत 5 ऐरावत, इस तरह कुल मिलाकर 170 कर्म भूमियां होती है। इनमें आर्यखंडों के अंतर्गत ये लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र में आर्यखंडों में भी कुछ काल भोग भूमि से संबंध रखने वाला होता है, जैसे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में 3-3 काल भोग भूमियों के होते हैं। याद है आपको अभी कुछ दिनों पहले उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का विस्तार से वर्णन था परसों। वो फिर कहते हैं कि अगब्बे भी जायदी, मान लो गर्भ में उत्पन्न हो रहा है कोई मनुष्य, तो गर्भस्थ मनुष्य बनकर के भी वहां पर सिकुड़ कर, मतलब वहां हाथ पांव पसार नहीं सकता गर्भस्थ शिशु, तो वहां सिकुड़ कर महीनों तक कष्ट भोगता है। अब सवेरे जब अपन ध्यान का वो सत्र करते हैं, एक अभ्यास करते हैं, अगर आधे घंटे बाद पैर को ढीला ना छोड़ा जाए तो क्या हालत होगी उस बच्चे की, कल्पना करो जो माँ के गर्भ में महीनों तक सिकुड़ा हुआ है, उसको हाथ पांव पसार नहीं मिलते, उसकी कितनी वेदना होगी। और विसर्जित तिव्वम दुखम निगम माणो भी जोड़ी दो, और माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, जन्म धारण करता है, उस समय का जो दुख होता है वो इतना तीव्र है, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा कि इसलिए मनुष्य मरने से डरता है कि दोबारा माँ के गर्भ में जाऊंगा तो फिर जन्म का दुख होगा मुझे, इसलिए मैं जिंदा रहूं, जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। क्यों? मरूंगा तो फिर मान लो मनुष्य पर्याय मिल गई तो माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, और गर्भ में जाऊंगा तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो जन्म के काल में होने वाला दुख होगा, वो दुख मैं दोबारा नहीं सहना चाहता, प्रचंड दुख होता वो। इसलिए आचार्यों ने कहा नत्थि भयम मिच्छु समम, मरने के समान कोई दूसरा डर नहीं है, और न दुखम जम्मणा समम, और जन्म के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। यानी मनुष्य पर्याय में मरने जैसा कोई दूसरा डर नहीं है और पैदा होने जैसा कोई दूसरा दुख नहीं है। बालो वे पियर चत्तु, मान लो जन्म हो गया किसी का, कई बार माँ बाप बच्चे को छोड़ देते हैं कूड़े के ढेर पर, कभी मार कर भी फेंक देते हैं, बहुत भयंकर स्थिति है। अभी तो आप स्मरण करो तो ख्याल आए कि ये सारे दुख कर्म के उदय से सभी जीवों को सहने पड़ते हैं, अपन ने भी पता नहीं कितनी बार सहन किए हैं पिछले जन्मों में। अपन कौन से दूध के धुले हैं, अपन ने कौन सा पाप नहीं कमाया अनादिकाल से, सब कुछ तो कर लिया, और इस जीवन में भी हिसाब लगाओ तो ख्याल आ जाए क्या क्या नहीं किया है। और मंदिर के अंदर धर्म स्थानों पर कषाय के कारण कौन से भाव नहीं किए मैंने, विचार करके देखो पता चलता है कि अपन कोई साफ नहीं है, सब इस संसार में सब के सब मैले हैं, लेकिन धर्म की शरण में आकर यहाँ पर भगवान के चरणों में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में अपन एक आंतरिक स्नान करने आए हैं। घर से वो स्नान करके आ गए वो एक अलग बात है, लेकिन इस बार अंदर का स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो चारों गतियों में भटकने के सिवाय क्या करना है भविष्य में। तो माँ बाप बच्चे को छोड़ जाते हैं, अभी भोपाल में हमारा चौमासा था और हम सवेरे जाते थे तो एक थैला पड़ा हुआ था, हमने सोचा कि ये थैला कैसा क्या है, फिर पास जाकर के देखा कि उस थैले के अंदर एक मरा हुआ बच्चा था, बिल्कुल अस्पताल के बाजू में। तो बहुत विकट स्थिति है, मनुष्य पर्याय भी है तो बहुत मुश्किल से मिलने वाली पर्याय, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं है भविष्य का, क्या परिणाम निकलता है इस पर्याय का कौन जानता है। तो माँ बाप बच्चे को छोड़ देते हैं या मार के फेंक देते हैं, और कभी कोई बच्चा जिंदा रह जाए तो पर उच्छिक्षेण बद्धते दुहिदो, वो दुखी बालक अनाथ बालक किसको माँ बोले, किसको पिता पुकारे, वो दोपहर के समय का इंतजार करता है कि अभी सब लोग अपने अपने घरों में भोजन करेंगे और बचा हुआ जो भोजन बाहर फेंक देंगे वो मेरे नसीब से मुझे मिलेगा। और वो लोग जैसे ही फेंकते हैं भोजन, कई बार कुत्ते झपटते हैं, कभी गाय आकर के खाती है, और कभी वो बच्चा उस भोजन को ग्रहण करता है। वो भी किस्मत में हो तब की बात है, अगर उस समय अशुभ कर्म का उदय हो तो कुत्ता उसके हाथ से झड़प करके ले जाएगा, वो भूखा रह जाएगा। बड़ी दुर्दशा है कर्मों के फल स्वरूप जीवों की। एवं इसी प्रकार थोड़ा और बड़ा हो जाता है जायंट सीलो, मांगना चालू कर देता है, भिखारी बन जाता है। कालम महादुखम गमेदी, बड़े दुख के साथ उसके एक एक दिन कटते हैं। मनुष्य पर्याय की कहानी है ये, पाप के कारण मनुष्य अशुभ कर्म के प्रभाव से क्या नहीं बन जाता है। ठेला चलाता, हमने बतलाया था आपको, नागपुर से कामठी तक लोग गर्मी के मौसम में हाथ ठेला मनुष्य होकर के खींच कर ले जाते हैं 9 किलोमीटर, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, अगर इतनी मेहनत ना करे तो फिर घर कैसे चलेगा और पेट कैसे पलेगा। तो पाप के उदय से मनुष्य भी क्या क्या नहीं बन जाता, नौकर बन जाता है और भिखारी तक बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। अकृत पुण्य की कथा आपको याद हो, वो नौकर का नौकर बन गया, लेकिन वो तो नसीब से उसने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे मालिक का बेटा है, तो उसको अपने यहाँ नौकरी नहीं करने दी, उसने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है ले जाओ, लेकिन कर्म योग विपरीत था तो फिर कुछ इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती थी। लेकिन विडंबना यह है कि इतने पाप का फल भोगने वाला मनुष्य भी और नए पाप कमाता जाता है। कितनी विचित्र बात है कि जिस पाप से वो परेशान हो रहा है उसी का नया बंध और बांध रहा है, फिर से पाप करता है। पुण्य कोई नहीं कमाता। पुण्य कमाने का नाटक जरूर करते हैं बहुत सारे लोग, मंदिर आकर कई लोग ड्रामा करते हैं कई बार दूसरों को दिखाने के लिए, और बाहर उनका जो जीवन होता है उसको देखकर नई पीढ़ी मंदिर से विमुख हो गई है।